ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये चुनाव केवल सरकार गठन का चुनाव ही नहीं बल्कि ये विकसित भारत का चुनाव है। आज सहारनपुर में एक रैली में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि यदि इरादा सही है तो परिणाम भी सही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है और हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए हमने 10 वर्ष तक काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में आए परिवर्तनकारी बदलावों को रेखांकित करने के लिए दिल्ली भाजपा युवा मोर्चे ने एक नई वेबसाइट मोदी ट्रांसफॉर्मिंग भारत की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार की पहलों के बारे में जनता को जागरूक करने में युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में युवा नेता दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और देश में हुए विकास कार्यों के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए आज 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उत्तरी गोवा से रमाकांत खलप और दक्षिणी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से कैप्टन विरियाटो फर्नांडीज को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और ग्वालियर से प्रवीण पाठक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे। एनआईए ने कहा कि इन दोनों अपराधियों को राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भीड़भाड़ वाले इलाकों से गिरफ्तार किया गया। भीड़ में असामाजिक तत्वों के हमले के कारण एनआईए दल के एक सदस्य को मामूली चोटें आई हैं। एनआईए ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि वो विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के रायगंज में उन्होंने आरोप लगाया कि आईएनए की आज की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो पश्चिम बंगाल एक दिन अफगानिस्तान बन जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित कथित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस मामले में सह आरोपी पार्टी नेता संजय सिंह भी न्यायालय के समक्ष पेश हुए। संजय सिंह को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली है। केंद्रीय एजेंसियों ने इन नेताओं पर आबकारी नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस कारण राज्य के खजाने को काफी नुकसान हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शिशुओं की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में 7 स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान 2 नवजात बालकों और 1 महीने की बच्ची को बचाया गया। सीबीआई ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विज्ञापन के माध्यम से फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि लाओस से 17 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा रहा है। डॉ जयशंकर ने इनके सुरक्षित वापसी के लिए लाओस में भारतीय दूतावास की सराहना की और लाओस के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ये सभी लोग अवैध तरीके से लाओस में फंस गए थे। तमिलनाडु में विक्रावंडी क्षेत्र के डीएमके पार्टी के 2 बार के विधायक एन पुरगजेति का विल्लुपुरम मेडिकल अस्पताल में निधन हो गया। 69 वर्षीय विधायक को लीवर संबंधित बीमारी थी। शुक्रवार को जनसभा के दौरान वो मंच पर ही बेहोश होकर गिर गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हॉकी मैच में भारत को 5-1 से हरा दिया है। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए दोनों देशों के बीच 5 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में आज 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।